गीतामृत कार्यक्रम में चौथा अध्याय और चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग की व्याख्या भगवान कर रहे हैं, जिसमें हमने ये 16वां श्लोक इसका भाग एक लिया था हमारे पिछले सेटिंग में। आज हम इसका भाग दो लेंगे। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो अब कर्म की व्याख्या या कर्म के नियमों की व्याख्या भगवान प्रारंभ किए हैं। तो कर्म, अकर्म, विकर्म, ये विभिन्न जो श्रेणियां हैं कर्म की, कैसे इसे समझा जाए। और अंत में भगवान अर्जुन को ये भी कहेंगे कि ये इतना गहन विषय है कि हमारे इस भौतिक बुद्धि से हम इसे पूर्ण रूपेण नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आज के श्लोक में जो भगवान ने कह दिया, कवयो प्यत्र मोहिता, कवि अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति, कि बड़े बड़े जो बुद्धिमान कवि हैं, कवि अर्थात केवल वो नहीं जो कविता रचते हैं, बुद्धिमान व्यक्तियों को भी कवि कहा जाता है। तो ऐसे वो भी मोहग्रस्त हो जाते हैं कर्म अकर्म विकर्म को जानने में। ये ऐसा गहन विषय है। तो इसलिए हम आज की हमारी चर्चा इस पर केंद्रित रखेंगे कि ये जो भगवान ने ये लाइन कही है, कवयो प्यत्र मोहिता, मोहिता या मोह, मोह का अर्थ क्या है। अब हमारे ही इन वैदिक ग्रंथों में विभिन्न अनुवाद और परिभाषाएं दी हैं इस शब्द मोह की। अक्सर देखिए, ये जो शब्द है, ये जब हम मंदिरों में आते हैं या सत्संग में आते हैं तो ये सारे शब्द सुनने मिलते हैं। ये सब ऐसे स्पिरिचुअल वोकैबुलरी है जो साधारणतः हम एक दूसरे के साथ ये सारे शब्द इस्तेमाल नहीं करते। जैसे माया, अब ये जो शब्द है, ये बाहर इसको किस संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है कि बहुत प्रेम है। मराठी में बोलते हैं ना आप लोग कि त्याची माया, है ना, कि बहुत प्रेम है उसका मेरे ऊपर। और यही अब जब हम इस्कॉन के प्रवचन में ये माया शब्द जब सुनते हैं तो वो रेड अलर्ट की तरह वो रहता है। तो मोह की एक परिभाषा आचार्यों ने इस प्रकार से दी है, वह आसक्ति जो हमारे मनुष्य जीवन के उद्देश्य के लिए प्रतिकूल हो। अर्थात आसक्ति, इसे नहीं मना किया गया है, आसक्ति को मना नहीं किया गया है, अर्थात वही आसक्ति जब अनुकूल बन जाती है हमारे मनुष्य जीवन के उद्देश्य के लिए तो उसे मोह नहीं कहेंगे, उसे फिर रुचि, प्रेम, भाव इत्यादि, ये सारे शब्द हैं उसके लिए। तो ये जो प्रतिकूल आसक्ति, ये कैसे इस पर कुछ निर्णायक हम एक पॉइंट पर आए कि ये पॉइंट के बाद फिर ये आसक्ति जो है ये मोह में परिणित हो जाती है, या ये आसक्ति जो है वो प्रेम में परिणित हो जाती है। जैसे महाभारत के संदर्भ में कथा है, युधिष्ठिर महाराज जब उनका राज्याभिषेक हो चुका था, अब पूरे हस्तिनापुर के राजा, पूरे विश्व के राजा युधिष्ठिर, अब उनके बाकी के और चार भाई वो राजमहल में रह रहे हैं। तो हस्तिनापुर में एक बार एक ऐसा किस्सा हुआ कि कुछ लोग कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए युधिष्ठिर महाराज के समक्ष। उस समय युधिष्ठिर महाराज वो सुबह के अपने प्रातःकालीन पूजा में व्यस्त थे, तो उन्होंने भीम, अर्जुन इत्यादि उनको नियुक्त किया हुआ था कि आप थोड़ा कोई भी समस्या लेकर आता है तो आप उसका समाधान दीजिए उन्हें। परंतु ये ऐसी समस्याएं थी या ये ऐसी पहेलियां थी जो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इनके द्वारा भी नहीं बुझाई गई। तो सबसे पहला व्यक्ति आता है और वहां पर भीम वो है द्वार पर अटेंड करने के लिए, तो ये अपनी समस्या भीम के सामने प्रस्तुत करता है। समस्या ये है, मैंने आज देखा कि मेरा जो खेत, जिसे मेरे खेत की दीवार, उसको मैंने चिना था रक्षा करने के लिए, वो दीवार खेत को खा रही है। दीवार ही खेत को खा रही है। तो भीम सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं हुआ था उनका, और ये क्या तुम बेहुदे बातें कर रहे हो, कोई दीवार खेत को खाती है? रुक जाओ भाई, पूजा उनकी हो जाएगी, वो युधिष्ठिर आएंगे तो देखते। फिर एक और आया, तो उसकी पहेली के रूप में उसकी समस्या उसने प्रस्तुत की। उसने कहा, मैंने देखा कुएं से मैंने पानी निकाला और कुछ बहुत सारा पानी, बड़े बड़े 2-3 ड्रम में मैंने वो पानी भरा, कुआं खाली हुआ, और फिर जब मैंने वापस से कुएं में वो पानी डाला तो कुआं भरे ही ना। उतना ही पानी जो मैंने कुएं से निकाला, अब कुएं में जब डालने गया तो कुआं भरे ही ना। बुझाओ इस पहेली को। नहीं भाई, रुक जाओ, नहीं हमसे नहीं हो। फिर तीसरा व्यक्ति, उसने कहा, मैंने देखा कि एक गाय जो है वो अपने बछड़े को जन्म दी है और बछड़े को वो चाटते जा रही है, जन्म के पश्चात चाटती है गाय, तो बछड़े को चाटते जा रही है, इतना चाट रही है कि वो बछड़े के स्किन से, चमड़ी से खून निकलने लगा। और फिर चौथा व्यक्ति वो पहेली लेकर आता है कि मैंने देखा कि रास्ते में एक बहुत पर्वत समान पत्थर गिरा हुआ है, रास्ते को रोक दिया है, जो नदी की ओर रास्ता है हमारे गांव का, उसको रोक दिया है, और फिर सभी प्रयास कर रहे हैं उस पत्थर को हटाने का, कोई पत्थर हटा नहीं पा रहा है। फिर एक साधु आते हैं, एक सन्यासी आते हैं, और वो अपने सन्यासी चद्दर से एक धागा निकालते हैं और उस धागे को वो बांधते हैं उस पत्थर के चारों ओर, और उस पत्थर को उस रास्ते से बाहर निकाल देते। कैसे संभव है? तो युधिष्ठिर महाराज आते हैं तो उनके सामने अब ये चार पहेलियां। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ये जो पहली पहेली है, ये सब कलयुग के लक्षण, वो बताए कि अभी कलयुग शुरू होने वाला है, हमारा द्वापर युग खत्म होने वाला है, और ये चारों जो पहेलियां हैं ये वास्तविक रूप में है क्या, कलयुग शुरू होने के लक्षण है। तो पहला लक्षण कलयुग का ये रहेगा, जो दीवार खेत की सुरक्षा के लिए बांधी जाती है वो उसी खेत को वो दीवार खाएगी, अर्थात जो रक्षक होंगे वो भक्षक बनेंगे इस कलयुग में, रक्षक ही भक्षक बनेंगे। फिर जो दूसरी पहेली याद है आप लोगों को, कुएं की पहेली, कि इतने सारे ड्रम भर गए पानी के, कुएं ने भरे, और फिर वो सारे ड्रम मिलाकर वापस से जब कुएं में पानी डाला तो कुआं भर ही नहीं पाया। अर्थात कलयुग में एक पिता कुएं के समान, वो चार पांच बच्चों का भरण पोषण कर लेगा, परंतु जब वो वृद्ध हो जाएगा पिता, तो ये चार पांच लड़के लड़कियां जो भी हैं बच्चे उसके, वो एक साथ मिलकर भी वो एक बूढ़े माता पिता को नहीं संभालेंगे, है ना। कलयुग में हम लोग फिर सुनते हैं तो कचकच करते हैं। तो ये कलयुग का दूसरा लक्षण। अच्छा, अब तीसरा लक्षण, ये जो मुद्दा है इसके ऊपर, कि कलयुग में मां बाप अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार देंगे, इतना लाड़ प्यार देंगे, इतना चाटेंगे, जैसे कि वो गाय उस बछड़े को। हमने देखा है कि आजकल 10th का एग्जाम बच्चों का किसी का चल रहा है, तो हमने देखा है कि वो जो माँ है वो जब तक वो पेपर लिख रहा है तब तक वो प्रदक्षिणा करती रहती है एग्जामिनेशन हॉल का। और एक हमारा जमाना था, हम लोग चार भाई बहन, हमारी माता को पता भी नहीं होता था कि मैं कौन से क्लास में हूं। लेकिन आजकल वो इतना अत्यधिक, ये नहीं कि लाड़ प्यार नहीं देना चाहिए, जैसे कि गाय जो है आवश्यक है कि वो अभी जो पैदा हुआ बछड़ा है उसको वो चाट कर साफ करे, परंतु अत्यधिक जब गाय चाटना प्रारंभ रखती है, अपना जारी रखती है, तो फिर वो जो बछड़ा है खून निकलने लगता है। इसलिए ये जो अत्यधिक चाटना, अत्यधिक लाड़ प्यार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैम्परिंग, देयर शुड बी लव एंड अफेक्शन बट नॉट पैम्परिंग, उसके वजह से वो मोह में परिणित होता है। और फाइनली युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि वो जो सन्यासी, जिनके सन्यासी चद्दर से वो एक धागा निकाला गया, वो सन्यासी होंगे श्री चैतन्य महाप्रभु। और ये जो बड़ा पर्वत रूपी पत्थर रास्ते में रोड़ा डाले हुए है, वो है कलयुग के अनर्थ। और चैतन्य महाप्रभु जो सन्यासी अपने कृपा के चद्दर से एक धागा निकालेंगे इस हरे कृष्ण महामंत्र का, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम, तो ये एक धागा काफी रहेगा इस महान विशाल जो पर्वत रूपी पत्थर को उस रास्ते से बाहर निकालने की। तो ये है एक अर्थ इस शब्द मोहिता का। ये तो हमने अक्सर सुना है इल्यूजन, मोह का अर्थ है। एक और अर्थ है इल्यूजन का, अर्थ है वो चीज जो दिखती है कुछ और परंतु होती है कुछ और। जैसे मैं लास्ट वीकेंड मैं बॉम्बे जा रहा था, तो नासिक रोड स्टेशन पर जन शताब्दी से मैं जा रहा था, तो अपना बैग लेकर मैं अपना जो फुटओवर ब्रिज है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जा रहा था, तो एक व्यक्ति मुझे घूरे जा रहा है। और आपको समझता है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो कौन आपको घूरते जा रहा है। तो मैं कुछ समय से देख नहीं रहा था उसको डायरेक्टली, लेकिन मुझे समझ रहा था कि ये कॉन्स्टेंटली 10 मिनट हो गए घूरे जा रहा है। तो फिर फाइनली मैंने कहा कि इसको भी समस्या सुलझा देते हैं, तो मैंने उसकी तरफ देख लिया और मैंने कहा बोल ले भाई बोल ले, क्या कुछ प्रॉब्लम दिख रही है मेरे अंदर, क्या कुछ बोल ले। तो मैंने मुस्कुरा दिया और फिर उसको लगा कि हाँ मतलब ये नॉर्मल लगता है बात करने लायक। तो उसने कहा महाराज आप वो योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदार हो क्या। ये अभी इस लास्ट वीकेंड की बात। तो मैंने कहा नहीं, खाली कपड़े वैसे हैं शायद, नहीं नहीं आप वैसे ही लग रहे थे, मुझे लगा आप शायद उनके रिश्तेदार हो क्या। मैंने कहा नहीं। फिर फाइनली उसने कहा आप भी ट्राई करो। तो मैंने कहा और कोई हो ना हो एक वोट तो मिलेगा। तो इल्यूजन, दिखता कुछ है, समझते हम कुछ और हैं, उसका अर्थ कुछ और होता है। तो मोह, जैसे हमने कहा कि सत्संग में आते हैं तो ये मोह माया, ये सारे जो शब्द हैं ये सुनने मिलते हैं। जैसे वो प्रसिद्ध कथा है महाराज जनक, उन्होंने ये प्रश्न एक बार अपने विद्वत सभा से पूछा कि ये मोह माया से छुटकारा कैसे पाया जाए, और अपने विद्वत सभा से पूछा है तो वो सब, अब महाराज ने प्रश्न पूछा है तो सही सही उत्तर देना होगा। तो वो लोग अपने पोथियां खोले, शास्त्र खोले, उसी समय अष्टवक्र मुनि उन्होंने प्रवेश किया महल में, और जैसे ही अष्टवक्र मुनि ने प्रवेश किया तो ये लोग सब, अब इस समय यदि अष्टवक्र मुनि ने प्रवेश किया है तो ये तो प्रश्न ठीक ठीक इसका जो जवाब है यही दे पाएंगे। तो फिर महाराज जनक भी बहुत प्रसन्नचित हुए कि इस समय पर ऐसे महान विद्वान ज्ञानी अष्टवक्र मुनि आए हैं। तो फिर उन्होंने तुरंत ये प्रश्न उनके सामने रख दिया। तो अष्टवक्र मुनि ने कहा देखिए आप सबसे पहले आपके सिंहासन से नीचे उतरिए, ज्ञान जो है वो ऊपर से नीचे बहता है पानी की तरह, हम नीचे उतरिए। तुरंत महाराज जनक वो एक निचला स्थान लेते हैं, अष्टवक्र मुनि को अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। अब प्रश्न क्या है पूछो, वही प्रश्न, मोह माया से कैसे छुटकारा पाया जाए। अष्टवक्र मुनि ने प्रश्न सुना, सिंहासन से उठ खड़े हुए और बाहर दौड़ने लगे। कल्पना करो ये स्टाइल है उनका जवाब देने का, कि मान लो आप में से किसी ने मुझे प्रश्न पूछा प्रभु जी मोह माया से कैसे छुटकारा पाया जाए, और मैं बाहर दौड़ने लग गया। आपको लगा ये तो हमसे छुटकारा पाने के लिए दौड़ रहे लगता है, लेकिन वो लोग असमंजस में पड़ गए, परंतु फिर भी जिज्ञासु थे कि अष्टवक्र मुनि जैसे विद्वान वो किसी साधारण कारण की वजह से नहीं बाहर दौड़ेंगे। तो सब लोग उसके पीछे पीछे, उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। बाहर एक बड़ा पेड़ था, पेड़ को उन्होंने आलिंगन किया अष्टवक्र मुनि ने, और चिल्लाने लगे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और महाराज जनक को उनके सवाल का जवाब मिल गया। होता क्या है, हम लोग ही पकड़ कर रखते हैं मोह माया को, हम लोग पकड़ कर रखते हैं और पकड़े हुए फिर प्रश्न पूछते हैं कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे छुटकारा पाया जाए। जैसे कि एक शिकारी तोते को कैसे पकड़ता है, जिन तोतों को शिकारी बेचता है पिंजड़े में डालकर, अब उनको वो तीर नहीं मार सकता क्योंकि वो घायल हो जाएंगे तोते, और घायल तोते को कौन खरीदेगा। तो जिस पेड़ पर अक्सर तोते आकर बैठते हैं, जहां पर उनके मंडली जमती है, तो उस पेड़ पर एक बांबू से रस्सी को पिरोकर वो एक झूला बनाता है शिकारी, उसके लिए एक झूला बनाता है। जैसे ही तोता झूले को देखता है तो झूले पे जाके बैठने का प्रयास करता है, तो अपने पंजों को रखता है, और जैसे ही उस बैंबू पर वो अपने पंजे रखता है तो वो बैंबू जो है घूमने लगता है। जैसे वो बैंबू घूमता है तो तोता वजन के वजह से नीचे जाने लगता है, और उस तोते को लगता है कि मैं गिरने वाला हूं, मैं गिरने वाला हूं, और जैसे वो सोचता है कि मैं अभी गिरने वाला हूं और कसकर पकड़ता है उस बैंबू को। तो जितना कसकर पकड़ता है उतना घूमता है, जितना घूमता है उतना और कसकर पकड़ता है, और इस कश्मकश में, तोते की इस कश्मकश में शिकारी आता है, तोते को पकड़ता है, पिंजड़े में डाल देता है। तोते ने करना क्या था, तोते ने केवल छोड़ देना था उसे, परंतु उस भ्रम में, उस इल्यूजन में तोता चला जाता है कि यदि मैं इस बांबू को छोड़ दूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। उसी प्रकार से हम भी मोह माया को कसकर पकड़ते हैं और कसकर पकड़ना चाहते हैं यह सोचते हुए कि यदि मैं छोड़ दूं तो गिर जाऊं। ये नहीं जानते कि हमारे पास भगवान ने वो पंख दिए, तोता कितना ऊपर उड़ सकता है, परंतु उस आसक्ति के कारण, उस भ्रम के कारण वो तोता जो है पिंजड़े में बंद कैद हो जाता है और फिर सालों साल उस पिंजड़े में बंद रहता है। तो इसे कहते हैं इल्यूजन। तो आज हम दो प्रकार के ये इल्यूजन्स जो होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। एक इसको कहते हैं इल्यूजन ऑफ परसेप्शन और एक है इल्यूजन ऑफ कंसेप्शन। घबराइए मत, हिंदी में इसका अनुवाद हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इल्यूजन ऑफ परसेप्शन का अर्थ है जब हमारी दृष्टि में भ्रम होता है, भ्रमित दृष्टि। इल्यूजन ऑफ कंसेप्शन का अर्थ है भ्रमित विचारधारा। और हम चाहे पशु हो मनुष्य हो, विशेष रूप से हम मनुष्य, हम दोनों रूप से हम भ्रमित रहते हैं। हमारी दृष्टि से वी आर इल्यूजन्ड बाय अवर परसेप्शन एंड वी आर ऑल्सो इल्यूजन्ड बाय अवर कंसेप्शन। तो सबसे पहले हम लेंगे भ्रमित दृष्टि। व्हाट इज इल्यूजन ऑफ परसेप्शन, क्या कहते हैं आप लोग मराठी में, दिसत तस नसत, फसत। तो आपके सामने हमारा पहला वीडियो दिखाएंगे आपको। आप लोग ने सब आईपैड देखा होगा, एप्पल कंपनी का, कईयों के घरों में भी आपके होगा आईपैड। तो ये एक ऐसा जादूगर जिसको खिताब मिला, द आईपैड मैजिशियन। अब देखिए ये जिस प्रकार की जादू प्रस्तुत कर रहा है, हमारी आंखें देख रही हैं, ये सभी दर्शकों को ये जो जादू दिखा रहा है, जो जादूगर होता है वो करता क्या है, जादूगर करते क्या है, हमारी आंखों में धूल झोंकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि उसमें कोई सच्चाई है, सब जानते हैं, वो भी जानते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जानते हैं, फिर भी पैसा दे दे के क्या देखने जाते हैं, झोंक भाई, धूल झोंक, हाँ मजा आता उसमें।
I saw what our next guest could do with an iPad. I was blown away all the way from Germany. Please welcome magician Simon Piero. I saw something that was on Ellen Tube, I think, but I have not seen what you're doing today. I wanted to be surprised.
Thanks for having me.
Okay, thanks for being here.
So you might be surprised about a couple of things that I found out with the iPad. I don't know if that ever happened to you, but if you go through like this, this might happen. So if it does so, don't worry. It's not a software problem or anything. This is just... more space for your own creativity.
Okay.
So, can you see that string?
Yes.
Here?
Good. Right. Thanks
to this string, I stop it, and I do have access to a whole new set of new apps, all a bit better than the old ones. So, thanks to this string, I can actually show you my last 2,000 pictures for my vacation. Don't worry, I won't show you all of them, Ellen. I just show you the overview, because that way I can easily print them. Which is fantastic. My parents, they do not have an iPad.
Uh-huh.
So I just put it on a postcard and send it back all the way to Germany. But before I do so, I always make a copy. Otherwise, the data might get lost. I know this app doesn't make any sense, but it's fun. And I think FaceTime is as well. So let me call a friend of mine. I hope he's ready. If you are too, that is you. That's
yes.
The audience.
Uh-huh.
And hey, Christoph.
Hi, Simon.
Can you hear me?
Yes, I can hear you.
Okay, are you ready?
I'm ready.
Please, do your best. I'm at Ellen. Okay,
yes, so
right there. Yes?
Okay, like that?
Perfect. So thanks to this straw here, I can easily...
Worked well?
Worked well, thank you, yes. Alan, thanks to this straw, I can share not only music, videos, but also Coke. Tastes excellent, but I can also give something back. He doesn't know about that. Some coconut milk
That's
from
all.
California.
You still need me?
1 second, please. And here we go. Milk is coming. Okay, as you can see, it's still a prototype, but it worked. Please give a hand to Christoph.
Wow.
Alan, this iPad is also a very good hiding place, a place to hide stuff. For example, for today, I have, let me find it, it's well secured over here. On the third page, I'm hiding for today an Alan pen. So here we go, because I'm going to need that in a second. Please, can you hold that? And... As Neil Patrick Harris just reminded us that you are the queen of selfies, I wanted to create an app just for you. And that's what I did. So what I do now, I go into the audience. I will come back in a second.
Okay.
So let me... What a beautiful audience. Hello over there. Hi. So what about these two beautiful ladies? Would you join me on a selfie? So please, come a bit closer, turn the camera around, and we are ready to, and smile, I do some, okay, got it, thank you very much, and now, I can show you how your app will work. This is the Alan selfie. I just take one of the last pictures, one of the few pictures I made, and here it is. This is how the app looks like. This is how my grandmother's picture frame looks like. And now I need your help on a count of three. One, two, three. And there it is. And this is not another iPad. This is a real life.
What? What? Go to our website to find out more about Simon. If you have an amazing magic act you want me to see, please post it on EllenTube. We'll be right back. Wow!
Thank you.
Hey, Ryan, we gotta go. Ryan, there you are.
What are you doing,
man? Waiting for
you.
Oh, that's perfect.
No! No!
If you kick a soccer ball just right... Get a puppy!
No.
Let me finish this.
This is how I double my money. Might be illegal.
I'm making sure they only take one piece of candy. He stole their candy. Thank you.
You save up enough money.
Piggy bank. Come back with my money.
All right, here we go.
Hey, thank you so much for watching our videos this year. You guys are awesome and I love you. If you want to keep up to date with our videos as they come out, check out our Instagram page. Bye.
अब देखो आप लोग जब सिनेमा देखने जाते हैं तो वहां पर वो स्क्रीन के ऊपर जैसे आपने ये सब देखा ये कुछ इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं थी लेकिन आपकी आंखें क्या देख रही हैं उसने वो तौलिया घुमाया और एक कुत्ते का पिल्ला बन गया तो आंखें क्या देखती हैं वो स्क्रीन के ऊपर और धीरे धीरे जो मन बुद्धि है वो मन बुद्धि पूरा शॉर्ट सर्किट होके वो साइड में बैठ जाती है कि ये आंखें जो देख रही हैं हम लोग कितनी भी बुद्धि लगाएं इसको समझने की क्या लॉजिक है कि कैसे ये हो रहा है लेकिन फाइनली मन बुद्धि को चुप कर देता है मजा आ रहा है देखने दे इस आंखें को देखने दे हाँ। तो ये जो सिनेमा में दिखाते हैं कि पूरे 3 घंटे का एक सिनेमा पूरा आप देख कर आओ उसके अंदर एक्शन है रोमांस है जैसे वो कौन सी मूवी थी ना बहुत फेमस DDLJ है ना अभी तक वो लोग बोलते हैं कि उसके गीत गाते रहते हैं लोग तो DDLJ देखकर एक पति पत्नी आते हैं घर पर तो पत्नी पति को कहती है तुम नहीं कभी वो शाहरुख खान के जैसे प्यार करते मुझे देखो काजोल को कैसे प्यार कर रहा था तो पति कहता है देखो भाई 3 कारण है उसके वो जो उसको इतना प्यार कर रहा है ना उसके 3 कारण है वो शाहरुख खान सबसे पहला कारण है कि 3 घंटे करना है उसको हाँ उसको बोलो जिंदगी भर कर सबसे पहला कारण है केवल 3 घंटे करना है उसको और उस 3 घंटे के प्यार के उसको 3 करोड़ मिलते हैं कोई मुझे दे क्यों नहीं करूं हजार बार कर लूंगा दोनों हाथ ऐसे और तीसरा कारण जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है तीसरा वो ये है कि वो काजोल उसकी बीवी नहीं है तो देखो ये जो सिनेमा में ये जो भ्रम दिखाते हैं अब आप देखो ये विशेष रूप से बॉलीवुड के अंदर पता नहीं आजकल इस प्रकार के सिनेमा बनते हैं क्या वो लास्ट सीन होता है कि जब वो विलन जो है वो हीरो को गोली मारने के लिए उसने वो तमंचा आगे कर दिया है और ट्रिगर दबा रहा है और गोली छूट गई है और फिर उसकी मां हीरो के सामने आ जाती है अपने सीने पर गोली ले देती है अब आप देखिए गोली की स्पीड क्या होती है हा? गोली की स्पीड क्या है उसकी मां की स्पीड क्या है मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आपके दिमाग में फिट हो सकती है और फिर फाइनली उसको गोली लग गई है एक नहीं 3-4 गोलियां लग गई है और मरने से पहले जो सबसे क्रूशियल सीक्रेट है उस मूवी का वो मरने से पहले बोल के मरती मतलब इतना उसके अंदर खून है इतनी जान उसके अंदर है वो डायलॉग बोलने के लिए वो सीक्रेट बताने के लिए बेटा वही तेरा भाई है तो क्या होता है हम लोग देखते हैं फिर बाद में वो आंसू टप 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 आंसू टपक करेंगे मैं अभी वो कल्याण में था तो मैं वहां पर बता रहा था कि कई बार हमें लगता है कि भक्ति की परिभाषा हम कैसे देते या सत्संग हम किसे कहते हैं कि हम लोग बैठकर रामायण सीरियल देख रहे हैं टीवी पर हाँ अपने बेडरूम में रामायण सीरियल देख रहे हैं और वहां पर सीता को रावण ने अगवा कर लिया है और देखते हुए टप 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 आंसू गिर रहे हैं और लेज चिप्स खाते हुए लेज के चिप्स खाते हुए आंसू बहा रहे हैं और फिर हमें लगता है कि हम कितने राम के भक्त हो गए कि किसने ऐसे आंसू बहाए होंगे रामायण देखते हुए। और फिर आधे घंटे का वो सीरियल होता है, जब सीरियल खत्म हो जाता है फिर हम चैनल चेंज करते हैं, चैनल चेंज करते हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है उसके अंदर पाकिस्तान जीत रहा है इंडिया हार रही है, वहां पर भी टप 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 आंसू गिर। तो मतलब चाहे वो रामायण में सीता को रावण ने हरण कर लिया हो या फिर इंडिया पाकिस्तान मैच में इंडिया हार रही हो, हमारे आंसू तो वैसे ही निकल रहे हैं। परंतु वो वास्तविकता नहीं है, वो आंसू जो निकल रहे हैं वो वास्तविक प्रेम के आंसू नहीं है। इसलिए एक मुझे डिवोटी ने ये वीडियो भेजा था और उन्होंने मुझे पूछा कि ये जो जादू, ये डेविड कॉपरफील्ड करकर मैजिशियन है बहुत फेमस, तो ये डेविड कॉपरफील्ड का ये जो जादू है, ये मैंने आज तक ऐसा जादू एक मिनट के अंदर कोई कर कर दिखाए, मैं पूरा कंफ्यूज्ड हूं, तो यदि तू इसको क्रैक कर सकता है तो बता। तो मैं आपके सामने पहले तो ये जादू प्रस्तुत करना चाहूंगा, फिर हम देखते हैं कि हम इसको इसका पर्दाफाश कर सकते हैं क्या, क्रैक नहीं पर्दाफाश। तो बेसिकली ये जादू इस प्रकार का है, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा कि वो आपको जो ताश के पत्ते होते हैं तो ताश के पत्ते दिखाए जाएंगे और उसके अंदर फिर वो आप लोग सबको पूछेगा, शायद आपने भी देखा होगा ये, तो फिर आपको वो पूछेगा कि इसमें से आप आपके मन में एक ताश का पत्ता सिलेक्ट कीजिए और फिर वो आपके मन में जाके पता लगा लेगा कि कौन सा पत्ता आपने सिलेक्ट किया है और उसमें से फिर एक पत्ता जो आपने सिलेक्ट किया वो गायब कर देगा। सारे पत्ते बदल दिए, हाँ आंखों में धूल झोंकी है। जब पहली दफा मैंने देखा मैं समझ गया ये कैसे बेवकूफ बना रहा है, आपको समझ में आया? उसने सारे पत्ते बदल दिए, तो आपने जो सोचा वो तो होगा ही नहीं, जो जिसने भी जो पत्ता सोचा होगा वो होगा ही नहीं, क्योंकि सारे पत्ते सेकंड इस स्लाइड में बदल चुके। वैसे ही जब हम इस प्रकृति में मोहग्रस्त हो जाते हैं तो जो वास्तविकता है वो हमें दिखती नहीं, दिस इज कॉल्ड द इल्यूजन ऑफ परसेप्शन। सबसे पहले हमारे दृष्टि का भ्रम, ये बहुत ही बायोलॉजिकल और फिजिकल सेंस में है ये। अब इससे ज्यादा जो हम मनुष्य जिससे भ्रमित रहते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे और ये है इल्यूजन ऑफ कंसेप्शन। दिस इज मोर डीपर एंड मोर डेंजरस एंड डेडलियर देन द इल्यूजन ऑफ परसेप्शन, दिस इज कॉल्ड द इल्यूजन ऑफ कंसेप्शन। तो इसमें दस प्रकार के भ्रम हैं जो हमारे अलग अलग शास्त्रों में भ्रम की परिभाषा दी गई है, विशेष रूप से हम मनुष्यों के संदर्भ में। तो 10 प्रकार के भ्रम, 10 टाइप्स ऑफ इल्यूजन, एंड दिस इज इन रिगार्ड्स टू इल्यूजन ऑफ कंसेप्शन, विचारधारा का भ्रम, भ्रमित विचारधारा। तो सबसे पहला भ्रम बद्ध जीव को होता है, वर्ल्ड इज मेंट टू प्रोवाइड फॉर माय कोटा ऑफ एंजॉयमेंट, कि हम जब पैदा होते हैं तो हम इस भ्रम में और बढ़ते रहते हैं, और हमारी परवरिश भी होती है कि ये जो पूरा संसार बनाया गया है ये तुम्हारे भोग के लिए बनाया है। जैसे कि हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु वो इस कैटेगरी में था कि जितने देवी देवता हैं 33 करोड़, भगवान विष्णु भी, ये सब मेरे भोग के लिए बनाए गए, और उसने प्रयास भी किया कि इन सब को वो अपनी सेवा में लगाते हुए वो जो सर्वोपरि भोग विलासी बने उस पद को ये प्राप्त करे, इसके प्रयास में वो था हिरण्यकश्यपु। हालांकि फिर विफल हुआ उसका वो सारा प्रयोजन, उसका पूरा प्रोग्राम। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इल्यूजन। सेकंड, जब इस भ्रम में बद्ध जीव बड़ा होता है और फिर समय का प्रभाव उसके ऊपर देखता है कि समय कैसे प्रभावी है उसके ऊपर, द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम फैक्टर, तो उसको क्या लगता है, टाइम फैक्टर विल वन डे वर्क इन माय फेवर, अभी समय मेरे साथ नहीं है परंतु एक समय आएगा, वो वक्त आएगा जब वक्त मेरा साथ देगा। हमारे पुराणों में कथा है, ऐसे ही एक जंगल में एक तोता रहा करता था और बहुत खुशहाल उसका जीवन था, छोटा सा उसका परिवार और एक पेड़ पर उसका घोंसला, और जिसको कहते हैं ना हैप्पीली एवर आफ्टर टाइप लाइफ उसकी चल रही थी। तो एक दिन यमराज उस जंगल से गुजर रहे थे और ये तोता जानता था यमराज जी को, और यमराज जी ऊंचे पेड़ पर था ये तोता, तोते ने यमराज को देख लिया। अब तोता थोड़ा घबराया कि यमराज जी यहां पर क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि यमराज जी जहां पर भी घूमते हैं वो ऐसे ही हाय हेलो करने नहीं जाते किसी को। तो ये तोता थोड़ा सा घबराए हुए यमराज जी को देख रहा है। अब इस तोते की सिट्टी पिट्टी गुल हुई जब यमराज जी ने तोते को देख लिया, इतने ऊपर उस टहनी पर यमराज जी की नजर पड़ी, गर्दन ऊपर करके यमराज जी ने उस तोते की ओर देखा, और देखते गए यमराज जी, और बहुत ही ऐसे अचरज भरी दृष्टि दी तोते को। तोता घबराया और इतना घबराया, यमराज जी निकल पड़े, बस एक उन्होंने लुक दिया, एक ग्लांस, पूरा अचरज भरा ग्लांस और निकल पड़े। अब ये तोता कैसे उसको डिकोड करे, क्या बात है, क्या होने वाला है, पता नहीं। तो फिर वो गए गरुड़ जी के पास। अब गरुड़ जी कौन है, सारे पक्षियों में वो सारे पक्षियों के सरदार है गरुड़ जी। तो ये तोता गरुड़ जी के पास जाता है, सब रिपोर्ट करता है कि ऐसे ऐसे हुआ, आज यमराज जी आए, उन्होंने मेरे को ऐसा देखा, पता नहीं, कुछ कहा नहीं परंतु देखकर अचरज उनके एक्सप्रेशन में था उनके फेस पर। तो गरुड़ जी कहे कि ज्यादा से ज्यादा यमराज क्या कर सकता है, मृत्यु दे सकता है ना, अरे तू मेरे पीठ पे बैठ, मैं तेरे को ऐसी जगह जाकर छुपाता हूं कि देखना सबसे सेफ स्पॉट होगा। तो तोता बैठ गया। अब गरुड़ जी उड़ते उड़ते 7 समंदर पार और 7 पर्वतों को पार किया, 7 समंदर और 7 पर्वतों को पार करते हुए एक लोकालोक करके पर्वत है जो कि केवल गरुड़ जी पहुंच सकते हैं उस पर्वत पर। उस पर्वत पर एक गुफा है, उस गुफा के अंदर उस तोते को जाकर छिपाया गरुड़ जी ने और कहा बस यहां पर तुम सुरक्षित रहो, कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही गरुड़ जी उस तोते को वहां पर छोड़े और बाहर आ रहे थे गुफा से, वो तोता चिल्लाया जैसे कि किसी बहुत विकट पीड़ा में है, और वहीं मर गया। गरुड़ जी, अब गरुड़ जी अचरज में कि सात समंदर पार, ये सात पर्वतों के पार, ये लोकालोक पर्वत के ऐसी गहन गुफा में मैंने इसे छुपाया था और यहां रखते ही ये मर गया। कुछ तो कनेक्शन है वो यमराज जी जो देख रहे थे उससे। तुरंत गरुड़ जी गए यमलोक पता कराने के लिए कि क्या बात है। जैसे ही गरुड़ जी अब यमराज जी के सामने लैंड कर रहे हैं, यमराज जी गरुड़ जी को वेलकम करते हुए बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गरुड़ जी आपका। धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद? मैं परसों उस तोते को देख रहा था उस जंगल में और मैं सोच रहा था कि इस तोते का मरण लोकालोक पर्वत की उस गुफा में लिखा हुआ है, लेकिन ये इतना सा तोता एक दिन में उधर पहुंच कैसे पाएगा? क्योंकि इतनी दूर उड़ान भरनी है तो इतनी दूर कैसे उड़ के जाएगा ये? इसलिए मैं उसको देख रहा था अचरज भरी नजरों से, कैसे पॉसिबल है? इसका रिकॉर्ड के अनुसार तो इसका मरण कहां लिखा है? वहां लिखा हुआ। तो कई बार हमको लगता है कि हम भी ये पॉलिसी निकाल लें, ये पॉलिसी निकाल लें, हैं? LIC मेडिकल, ये वो सारे इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल लें, हैं? वो क्या है? सात समंदर पार करके, सात पर्वतों को पार करके लोकालोक पर्वत पे ऐसी गुफा बनाए हमारे लिए कि जैसे वहां पर अब कोई हमें पकड़ने आने वाला नहीं। और बाद में समझ में आता है कि अरे मृत्यु हमारी वहीं लिखी थी। तो जब इस भ्रम में कि समय जो है वो एक दिन मेरे अनुकूल कार्य करेगा, दिस इज द सेकेंड इल्यूजन। माय वे ऑफ एंजॉयमेंट इज द बेस्ट। देखो हम देखते हैं कि चाहे कोई विदेशी हो या देशी हो, चाहे कोई गुजराती हो, महाराष्ट्रियन हो, पंजाबी हो, साउथ इंडियन हो, बंगाली हो, कोई भी हो, आप देखो सबके अपने अपने एक तौर तरीके होते हैं इस संसार को भोगने के। मुझे याद है एक बार एक महाराष्ट्रियन परिवार मुझे बुलाए थे प्रसाद के लिए। तो ये पूरणपोली बनाते हैं खास वो लोग, तो पूरणपोली उन्होंने बनाई थी। अब हुआ क्या कि वो पति और पत्नी दोनों के अलग अलग मत थे कि पूरणपोली किसके साथ खानी चाहिए। पता नहीं आज दिन तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये पूरणपोली किसके साथ एक्चुअली खाते हैं। मैं अब तक कंफ्यूज हूं, पता नहीं ये इल्यूजन ऑफ परसेप्शन है या कंसेप्शन है। तो पति बोल रहा था, उसने वो बोला कि प्रभु जी इसको सार सार एक सार सार के साथ खाओ, सार के साथ। पत्नी कह रही थी नहीं दूध के साथ खाओ, दूध के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। अब वो दोनों ऑपोजिट है, वो सार और दूध दोनों ऑपोजिट है। तो यहां पर वो अब दोनों ने रख दिया, इधर दूध भी रख दिया, इधर वो सार भी रख दिया। अब ये लोग दोनों में बहस शुरू हो गई कि पूरणपोली खाते किसके साथ हैं, किसके साथ सबसे ज्यादा। तो ये बोल रहा है सार के साथ, ये बोल रही दूध के साथ, सार दूध सार दूध। मैं बैठा हूं, मैंने कहा भाई आपके दूध और सार में लग रहा है एक दूसरे को किसी को मार पड़ने वाली है अभी। और फाइनली मैंने कहा कि आप मेरे लिए चावल ले आओ, क्योंकि फाइनली मेरे को पूरणपोली पसंद ही नहीं। अच्छा, अरे प्रभु आप पहले बताते, हम तो यहाँ पे ना खाम तो सार और दूध में अटके हुए हैं। मैंने कहा आपने टाइम ही नहीं दिया, आप ही बिजी थे दोनों, सार दूध सार दूध। तो यही होता है कि कई बार किसी को लगता है कि पोहे के अंदर शेंगदाना होना ही चाहिए, और कई हैं जो उससे नफरत कर देंगे, क्या ये हर चीज के अंदर शेंगदाना डाल देते। तो ये कुछ उदाहरण, व्यावहारिक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। ऐसे आप लोग बहुत ट्रांसलेट करके मुझे भी दे सकते हैं उदाहरण कि कैसे हमको लगता है दिस एंजॉयमेंट इज द बेस्ट एंजॉयमेंट। फिर माय चॉइसेस आर अनमैच, मैंने जिसको चुना या जो मैंने कपड़ा चुना, जो मैंने घर चुना, जो मैंने पति पत्नी चुना, जो भी कुछ, ये मेरी बेस्ट चॉइस है। माय चॉइसेस आर अनमैच्ड। जैसे कई बार घरों के अंदर किस बात के ऊपर डिबेट होता है कि टूथपेस्ट मंजन मंजन होता है ना मंजन, कि मंजन का जो ट्यूब होता है उसको नीचे से दबाना चाहिए कि बीच से दबाना चाहिए, इसके ऊपर बहस होती है कि वो पति वो ऊपर से दबाकर टूथपेस्ट छोड़ देता है, फिर पत्नी नीचे से दबाती है उसको पूरा स्ट्रेट करती है, उसके ऊपर फिर नाश्ते के टेबल पर बहस होती है कि टूथपेस्ट नीचे से दबा, क्या लॉजिक है उसको नीचे से दबो ऊपर से टूथपेस्ट बाहर आना चाहिए, नहीं नहीं टूथपेस्ट तो बाहर आएगा लेकिन फाइनली वो ट्यूब कैसा दिखेगा, वापस जब लगाओगे तो ट्यूब कैसा दिखना चाहिए, बोले अरे दांत कैसे दिखने चाहिए वो देखो ना, ट्यूब कैसा दिखना चाहिए, होता है बहस होती है कि टूथपेस्ट का ट्यूब कहां से दबाना चाहिए। My decisions are unquestioned or they should be unquestioned. कि बेटा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, तो माँ कह रही कि नहीं इसको डॉक्टर बनना चाहिए, बाप कह रहा है कि नहीं मेरे तरह इंजीनियर बनना चाहिए, तो माँ कहती देख लिया ना तुमने इंजीनियर बन के तुमने कौन सा ना 30 मार्का बन गए तुम, तो दोनों और बच्चे को पूछा ही नहीं, वो एक वो व्हाट्सएप वीडियो सर्कुलेट हुआ है ना कि तुमको बड़ा होके क्या बनना है, बच्चों को पूछा जा रहा है, तो एक लड़की वो कहती है कि मुझे स्मार्टफोन बनना है क्योंकि सबसे ज्यादा समय मेरे माता पिता स्मार्टफोन के साथ बिताते हैं, इसलिए मुझे बड़ा होके स्मार्टफोन बनना है। तो ये चॉइसेस डिसीजंस द वे आई एंजॉय। अच्छा ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब हमारे मन में कोई बात बैठ जाती है चाहे वो कोई सुखद घटना हो या दुखद घटना हो, अक्सर मन क्या करता है वो सुख में हमको इस भ्रम में डालता है कि ये नित्य रूप से ये सुख बना रहेगा, नित्योत्सव रहेगा ये, और जब हम दुख में चले जाते हैं तो मन बोलता है कि बस अब इसके बाद तुम्हारे जीवन में कोई सुख नहीं लिखा, बस खत्म हो गया, तुम्हारे सुख का कोटा खत्म हो गया। सो व्हेन इन पेन माइंड एटर्नलाइजेस पेन, व्हेन इन प्लेजर माइंड एटर्नलाइजेस प्लेजर, दोनों भ्रम है, क्योंकि जिस रफ्तार से दुख आया है उस रफ्तार से वो जाएगा भी, और जिस रफ्तार से सुख आया है उस रफ्तार से जाएगा भी, दोनों में अटको मत। इसलिए ये सुख और दुख ये दोनों निर्धारित करता है कि हम देहात्म बुद्धि में रहें। जैसे वो कहा जाता है ना कि जब सुख आता है तो सुख में अटको मत, दुख आता है तो उससे उसमें भटको मत। तो सुख में हमको लगता है कि हां ये जो मेरा देह है ये मुझे सुख दे रहा है, उसमें हम फिर से देहात्म बुद्धि में, और जब दुख आता है तो अरे दुख मुझे ये देह जो है मुझे दुख दे रहा है, फिर से देहात्म बुद्धि। सो आइदर पेन और प्लेजर दिस माइंड मेक श्योर दैट वी आर इन बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट वॉट एवर हैपन्स इज टू हैपन विद इन दिस वन लाइफ, ये एक बहुत लोगों की फिलॉसफी बन गई है आजकल, है ना। चार्वाक मुनि उन्होंने क्या कहा, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य कुत पुनः आगमन भवे। चार दिन की जिंदगी है ऐश कर लीजिए। तो ये जो लोग इस फिलॉसफी के बेसिस पे जीते हैं अपना जीवन कि बस यही जीवन है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना, बस जितना मजा लूटना है इस जिंदगी में लूट लो, उसके बाद में तुमको कोई जिंदगी नहीं मिलने वाली, पुनर्जन्म कोई है ही नहीं। और कई बार हम लोग पुनर्जन्म जो है वो हमारे सहूलियत के अनुसार उस पर विश्वास भी करते हैं। जैसे एक बॉस वो अपने एम्प्लॉई से पूछ रहा था, तुम पुनर्जन्म पे विश्वास करते हो? उसने कहा सर कभी तो करते हैं, कभी 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 कर लेते हैं, कभी कभी नहीं करते। नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक ठीक बताओ, तुम पुनर्जन्म पे विश्वास करते हो कि नहीं करते? नहीं सर, इतना तो नहीं करते। नहीं, करना शुरू करो। क्यों क्यों करना शुरू करें? क्योंकि जिस दादाजी के डेथ पर तुम छुट्टी लेकर गए थे ना, वो मिलने आए थे, तो शायद अपने अगले जन्म में आए होंगे मिलने के लिए। सो बेटर यू स्टार्ट बिलीविंग इन री इनकारनेशन, बिकॉज द ग्रैंडफादर हुम यू डिक्लेयर डेड केम टू मीट मी। तो इसलिए इसके पीछे भी फिलॉसफी क्या है, चाणक्य पंडित कहते हैं कि जब इंद्रिय भोग करना है तो समझ लेना चाहिए कि अरे मैं अमर हूं, इतना जीवन है जीने के लिए, कभी हो जाएगा, ठीक है। परंतु आत्म साक्षात्कार का विचार जब आए तो समझ लेना चाहिए कि समय बहुत कम है, तुरंत मुझे आत्म साक्षात्कार ही बन जाना चाहिए। हम लोग उल्टा करते ना, उल्टा करते। जैसे राधेश्याम प्रभु हमारे जो ब्रह्मचारी हैं, तो वो जब ब्रह्मचारी बने, हमारे इस्कॉन पुणे के टेम्पल प्रेसिडेंट, जब वो ब्रह्मचारी बने तो उनकी जो सिस्टर्स वो बहुत व्याकुल हो गई कि अरे क्या कर रहा है, IIT का ग्रेजुएट, MTech, ये ब्रह्मचारी बनने जाने वाला है इतनी कम उम्र में। तो वो भी इस्कॉन में रुचि लेने लगी, पढ़ने लगी कि ये क्या फिलॉसफी से इतना प्रभावित हुआ है। फिर फाइनली सारी फिलॉसफी पढ़ने के बाद उन्होंने अपने भाई से कहा, देखो ये प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में कहते हैं कि ये आत्मा अमर है, इसको जन्म मिलते रहते हैं, अलग अलग उसको शरीर मिलते रहते हैं, तो तुम तो अमर हो ना, तुम अगले जन्म में ब्रह्मचारी बन जाना, है ना। उन्होंने प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़कर वो सही लॉजिक उनके ऊपर डाला, तो तुम अगले जन्म में ब्रह्मचारी बन जाना, तुम तो अमर हो। राधेश्याम प्रभु भी IIT के ग्रेजुएट, उनके भाई, तो उन्होंने अपने बहनों को कहा, यही प्रॉमिस मैंने पिछले जन्म में भी मेरी बहनों को किया, उसको मैं पूरा कर रहा हूं। फिर इसके बाद ये एक कैटेगरी का भ्रम होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आई कैन सॉल्व एवरीवन एल्सेस प्रॉब्लम, मतलब अपना तो सुलझ नहीं रहा है। और कई लोग वो ऐसा दावा देते हैं कि बस यदि अगला प्रधानमंत्री मुझे बताया जाए तो मैं ये सारा काला धन लेकर आ जाऊंगा, ये कुछ जानते नहीं ये लोग क्या करना है, कंसल्ट नहीं करते। सो सम पीपल दे आर इन दिस इल्यूजन दैट दे कैन सॉल्व एनीवन्स प्रॉब्लम्स। दिस इज अ वेरी टिपिकल काइंड ऑफ इल्यूजन सम पीपल हैव। जैसे मेरा एक दोस्त, मेरा बैचमेट था वो अरजिंदर, तो वो मुझे बताया करता था कि उसके पिताजी के पास सारी समस्याओं का, मतलब खासकर तौर पे उसकी समस्याओं का, मतलब मेरी सारी समस्याओं का मेरे पिताजी के पास एक ही हल होता था। जैसे वो टिपिकल घर के अंदर एक सीन, अब वो पढ़ाई लिखाई में इतना स्मार्ट नहीं था, तो कभी उसको जस्ट पासिंग मार्क्स मिलते थे, कभी कभी वो कुछ सब्जेक्ट में फेल भी हो जाता, मैथ्स बहुत कमजोर था उसका। अब इसके पिताजी जब भी उसको कोई नसीहत देते थे तो एक ही नसीहत देते थे अपने बेटे को, तू सुबह जल्दी उठाकर और ठंडे पानी से नहाया कर, चाहे ये हरजिंदर बताता था कि चाहे इसके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हो, मेरे पिताजी के पास एक ही सोल्यूशन था, सुबह उठाकर ठंडे पानी से नहाया। तो ये बोले मेरा मैथ्स कमजोर है, तो सुबह नहीं उठता है। अरे सुबह उठने मैथ्स से क्या संबंध है उसका, मैं हेड बॉय के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ, तू सुबह नहीं उठता है। अब ये इतना तंग आ गया ये हरजिंदर कि हर मेरी कोई भी प्रॉब्लम मैं प्रेजेंट करता हूं तो सुबह नहीं उठता है, ठंडे पानी से नहीं ना। तो फाइनली बोला, पिताजी मेरे को एड्स हो गया। अरे तू सो उठ के तो देख यार, मतलब अभी सुबह उठने से एड्स सॉल्व हो जाएगा? माय प्रॉब्लम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब चाहे कितना भी प्रदूषण फैल रहा हो, कितना भी ग्लोबल वार्मिंग सब कुछ हो रहा हो, लेकिन मेरी जो समस्या है अभी, आज की मेरी समस्या, जैसे कहते ना गृहिणी से पूछो उसकी क्या समस्या है, क्या समस्या बोलती है कि बाकी चाहे काला धन किधर भी हो, कौन सी भी पॉलिसीज, टैक्सेशन, डिमोनेटाइजेशन, जो भी कुछ हो रहा हो वो सब साइड में, क्या समस्या है गृहिणी की? नौकर नहीं है परसों से, शौहर वही है बरसों से। और फाइनली ये जो भ्रम से बद्ध जीव हर समय मायूस रहता है कि मेरे जीवन की ऐसी समस्या है कि यदि भगवान भी अपने 10 अवतार में अवतरित हो जाए, अरे वो भी नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये कैटेगरी है, या सुबह उठ के ठंडे पानी से स्नान कर सब हो जाएगा उससे। अब इल्यूजन ऑफ परसेप्शन एंड इल्यूजन ऑफ कंसेप्शन जिसकी हमने चर्चा की, तो ये है परसेप्शन की जब बात आती है कि दृष्टि, भ्रमित दृष्टि, ज्यादातर आप देखते हो जानवरों के अंदर, पशु समाज के अंदर, वो लोग अपने दृष्टि से, जैसे कि एक मछली है, एक मछली को जो मछुआरा है वो बेट फेंकता है हुक के अंदर, वो कुछ ब्रेड लटका के या फिर कुछ मांस का टुकड़ा, कीड़ा, और फिर वो हुक में जो फिशिंग रॉड से पकड़ते हैं फिशेस को, तो जो मछली है उससे भ्रमित, उसको समझ में नहीं आता है कि इसके पीछे हुक है, उसकी आंखों को दिखाई वो हुक नहीं देता है। तो मनुष्यों में और जानवरों में अंतर क्या है कि जानवरों के अंदर इल्यूजन ऑफ परसेप्शन है प्रचुर मात्रा में, और हमारे अंदर इल्यूजन ऑफ कंसेप्शन है प्रचुर मात्रा में। अब आप देखो कि एक मछली जो है वो नहीं जानती कि उसके पीछे हुक है जो उसको अटक जाएगी उस हुक के अंदर, परंतु मनुष्य जानता है, जैसे कि को जो सिगरेट पीते हैं वो जानते हैं कि जो सिगरेट है उनको कर्क रोग देगी, लिखा भी है उसके ऊपर, सब लोग जानते हैं, जो सिगरेट बना रही है वो कंपनी वो भी जानते हैं, जो पी रहे हैं वो भी सब जानते हैं, स्मोकिंग किल्स, लेकिन जानते बूझते हुए वो जो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कंसेप्शन, इल्यूजन ऑफ कंसेप्शन। ऐसे ही एक चेन स्मोकर था, तो चेन स्मोकर को एक महात्मा ने कहा कि देखो तुम्हारा ये जो धूम्रपान है उसके 3 फायदे हैं तुम्हारे, पहली दफा कोई फायदे बता रहा है धूम्रपान के, तो बहुत एक्साइट हो गया, वो भी 3 फायदे, वो भी एक साधु महात्मा बता रहा है, क्या है भाई ये 3 फायदे? सबसे पहला फायदा है कि तुम्हारे घर पे कभी कोई चोर चोरी करने नहीं आएगा। तो उसे समझ में नहीं आया कि धूम्रपान से चोर की चोरी का क्या कनेक्शन है। दूसरा फायदा, कभी तुम्हें कुत्ते या बंदर परेशान नहीं करेंगे, कुत्ते और बंदर परेशान नहीं करेंगे, धूम्रपान का क्या संबंध है उससे। तीसरा फायदा, तुम कभी बूढ़े नहीं होंगे। अरे वाह, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो टीका इसके ऊपर। फिर साधु महात्मा कहते हैं देखो तुम जो इतना चेन स्मोकिंग करते हो, इतना धूम्रपान तुम कर रहे हो, तो इसके वजह से तुम रात भर खांसते रहोगे, तो क्योंकि तुम रात भर खांसते रहोगे तो चोर को क्या लगेगा जगा हुआ ये, तो कभी नहीं आएगा चोरी करने डर के मारे। इसलिए पहला फायदा तुम्हारे धूम्रपान करने का, चोर कभी नहीं आएंगे चोरी करने। और क्योंकि एक समय बाद तुम्हें छड़ी लेकर चलना पड़ेगा, तो छड़ी लेकर जब चलोगे तो कुत्ते डर के मारे नहीं आएंगे पास में, ये दूसरा फायदा। और तीसरा फायदा, तुम जवान मरने वाले हो तो तुम बूढ़े कैसे होगे। फिर फाइनली वो समझ गया कि इसके अंदर व्यंग था, व्यंग टॉन्ट था. अब इल्यूजन को साइकोलॉजी की भाषा में दो प्रकार के नाम दिए गए. एक बोलते हैं यूटोपिया, दूसरे को कहते हैं डिस्टोपिया. अब यूटोपिया का अर्थ क्या होता है? इमेजिनिंग दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड प्लेजेंट. और डिस्टोपिया का अर्थ होता है इमेजिनिंग दैट एवरीथिंग इज इम्परफेक्ट एंड एवरीथिंग इज अनप्लेजेंट. तो कई बार हम इस भ्रम में जीवन जीते हैं कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है ना. कई बार आप आओ कि आप लोगों को कोई सत्संग में ये सुना दे, तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, है ना. कितना सुनने में अच्छा लगता है. लेकिन ये गीता का सार नहीं है. हाँ, ये पूरणपोली का सार होगा. ये गीता का सार नहीं है. जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा. भगवान अर्जुन को ये नहीं बोले कि तू जा भीख मांग ले वो भी अच्छा होगा. नहीं, उठा गांडीव और लड़ यहां पर. उनके लिए कोई अच्छा नहीं होने वाला है और तू छोड़ के जाएगा तेरे लिए भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है. तो इसलिए इमेजिनिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट और एवरीथिंग इज परफेक्ट. जैसे राधानाथ महाराज का एक बार आगरा में उनके एक बुक लॉन्च का बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज डिवोटीज कर रहे थे. तो शुभ विलास प्रभु हमारे उस समय वो महाराज के जर्नी होम के मेन प्रमोटर ऑर्गेनाइजर थे. तो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने आगरा में बहुत बड़े बड़े कुछ फॉरेनर्स, क्योंकि ताजमहल है वहां पर तो इतने फॉरेनर्स आते हैं, तो फॉरेनर्स के लिए एक बुक लॉन्च ऑर्गेनाइज किया था और बड़े हॉल के अंदर, सेमिनार ऑडिटोरियम के अंदर किया था. और उन्होंने सुबह का टाइम रखा था क्योंकि सुबह के समय ये सारे फॉरेनर्स जो है, और वो ऑडिटोरियम था ताजमहल के निकट, ताकि वो लोग ताजमहल देखकर सीधे ऑडिटोरियम में आ जाए. तो अक्सर आगरा में ताजमहल देखने के लिए लोग सुबह के समय, सनराइज के समय और सनसेट के समय, ये दो समय सबसे ज्यादा भीड़ रहती है फॉरेनर्स की. तो इन्होंने सुबह सनराइज के समय 7:30-8 बजे ऐसा रखा था कि ये लोग सनराइज में ताजमहल देख लेंगे और फिर प्रोग्राम के लिए आएंगे. तो महाराज को बुलाया गया खास बंबई से आगरा, पूरा ऑर्गेनाइज इन्होंने सब कुछ अपने अनुसार परफेक्ट रखा. परंतु उस दिन, जिस दिन महाराज का प्रोग्राम, उस दिन कोहरा छा गया. कोहरा जानते हैं ना, फॉग, धुंध. तो कोहरे के वजह से कोई फॉरेनर ताजमहल देखने ही नहीं आया, कोई नहीं आया. पूरा फ्लॉप शो था वो प्रोग्राम. महाराज वहां पर वेट कर रहे हैं, अब कोहरा तो वो छटे ना, 10 बज गए 11 बज गए. तो फिर वहां पर जो महाराज बोले कि ठीक है, अब इतना बड़ा ऑडिटोरियम, उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजर्स थे इधर उधर जो घूम रहे थे, महाराज बोले चलो उनको मैं कुछ सुना देता हूं. तो जितने 10-15 ऑर्गेनाइजर थे उनको स्टेज पे ही बुला लो, अभी उधर इतने बड़े ऑडिटोरियम में तुम लोग कहां बैठोगे. तो स्टेज पे ही वो लोग आ गए. फिर महाराज ने 1.5 घंटे तक फॉग के ऊपर लेक्चर दिया कि ये धुंध क्या है. फॉग के ऊपर राधानाथ महाराज ने लेक्चर दिया और सभी वो स्टेज पे बैठ के वो लेक्चर सुन रहे हैं. अभी सभी लोग उस भी भाव में है ना कि फ्लॉप शो हो गया, कोई आया नहीं, हमको ही सुनना पड़ रहा है ये लेक्चर. फिर फाइनली महाराज ने बहुत डेडली क्वेश्चन पूछ दिया. 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद महाराज ने पूछा, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश. और खाली एक ने हाथ ऊपर किया. तो फिर महाराज बता रहे थे, दीज आर द इंस्टेंसेस इन योर लाइफ व्हेन नथिंग गोज योर वे. आप एक भ्रम में रहते हो, यूटोपिया में रहते हो, that everything is going to be perfect according to my plan, my arrangement. So there is something called utopia and there is something called dystopia. Ki haan, अब हमको मायूस भी होके नहीं जीवन जीना है कि अरे मेरे साथ इतने फेलियर्स हुए हैं तो मतलब कोई है ही नहीं, मेरे जीवन में कोई सफलता लिखी नहीं है शायद, मतलब मैं शायद पैदा ही फेलियर के लिए हुआ हूं, मैं शायद पैदा ही दूसरों को जिताने के लिए हुआ हूं। इसलिए महाभारत में जब युधिष्ठिर महाराज वो भीष्म पितामह से मिलते हैं तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल नुस्खा दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को और हमारे लिए भी बहुत प्रैक्टिकल है सीखने के लिए। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एब्सोल्यूटली परफेक्ट और एब्सोल्यूटली इम्परफेक्ट, और चार चीजें बताते हैं। ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु यदि हम लें, कोई भी वस्तु इस संसार की ऐसी नहीं है जो एब्सोल्यूटली परफेक्ट हो, और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो एब्सोल्यूटली इम्परफेक्ट हो। जैसे कि कोई वस्तु अगर हम लें, सेल फोन, किसी को पूछा गया ये क्वेश्चन, डू यू यूज सेल फोन, उसने जवाब दिया सेल फोन इज यूजिंग मी। समझ में आया इसका? सो यस, यू शुड यूज सेल फोन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग अ सेल फोन, बट सेल फोन शुड नॉट स्टार्ट यूजिंग यू। सो नो ऑब्जेक्ट इज एब्सोल्यूटली इम्परफेक्ट, नो ऑब्जेक्ट इज एब्सोल्यूटली परफेक्ट। देन पर्सन, नो पर्सन इज एब्सोल्यूटली इम्परफेक्ट, चाहे कोई कितना भी अनपढ़ गंवार, चाहे कितना भी वो जाहिल हो या अपाहिज हो या बदसूरत हो या कितने भी दुर्गुणों से भरा हो, कुछ ना कुछ उसके अंदर होगा विच विल बी समथिंग लेस देन इम्परफेक्शन, एंड नोबडी इज परफेक्ट। ये तो हम लोग सब अच्छे से जानते हैं, नोबडी इज परफेक्ट। हाँ, हम लोग सब एक मिस्टर परफेक्ट, मिसेस परफेक्ट की खोज में होते हैं लोग, है ना, कि विवाह से पहले कौन है वो मिस्टर परफेक्ट या कौन है वो मिस परफेक्ट, और उस समय उनको लगता है जब वो है ना ऐसे ऐसे जो ख्वाब उबलते हैं कि हाँ यही है वो मेरे ख्वाबों का राजा या मेरे ख्वाबों की रानी, ड्रीम गर्ल, ड्रीम बॉय, ये सब कुछ। ऐसी शादी हुई एक की और वो जो उसकी पत्नी ब्यूटी पार्लर में गई थी, होता ना ब्यूटी पार्लर में जाके शादी से पहले, तो दो दिन से ब्यूटी पार्लर जा रही थी वो, शादी के दिन कैसे वो प्रेजेंट अपने आप को करेगी। तो शादी हो गई, अब वो ब्यूटी पार्लर वाले का बिल देना था, बिल बाकी था उसका। तो ये जो अभी नया नया पति बना है, तो इसने जाके बिल दिया, इसने क्या किया, इसने उसको एक नया आईफोन दिया, आईफोन का बॉक्स पूरा पैक्ड। ये इतना खुश हो गया, आईफोन सेवन का बॉक्स। फिर इसने खोला तो उसके अंदर नोकिया 1100 का फोन था। तो ये आया, ये बोला यार तूने ये क्या किया जो तूने किया, दो दिन पहले तूने भी मेरे को आईफोन 7 पैक करके दिया था, दो दिन बाद समझ में आया नोकिया है वो। फिर प्लेस, जगह, स्थान, कईयों को लगता है बस विदेश में सेटल हो जाए, हाँ विदेश जैसा कोई देश नहीं, क्या मौसम अच्छा रहता है, कितना सब साफ सुथरा रहता है, कोई हॉर्न नहीं मारते, कोई कुत्ते नहीं भौंकते हैं, कितना अच्छा रहता है। पहली दफा जब मैं और गोविंद प्रभु अमेरिका गए थे, फर्स्ट टाइम 2005 में, तो हम लोग सब इतने एक्साइटेड थे, हम लोग दोनों फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टू ब्रह्मचारी अमेरिका जा रहे हैं राधा गोपीनाथ मंदिर से, पूरे एक्साइटेड थे कैसा रहेगा। फ्लाइट में भी हम लोग बैठे हुए कि जो हम लोग इतना सुने हैं वैसा ही है क्या, है क्या, है कि नहीं। अच्छा सब कुछ वहां पर अच्छा था, हमको कोई अंदाजा नहीं था कि एक, अब ये थोड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, कर ही लेते हैं हम शेयर, जो कि हमको उधर जाने के बाद समझ में आया कि वहां के टॉयलेट में पानी नहीं होता। अब आपको ये छोटी बात लग रही होगी लेकिन आप जाओगे समझ में आएगा आपको, ये बहुत मेजर चीज है वो। हम भारतीयों के लिए ये बहुत मेजर चीज है, हम लोग सब पले बड़े हैं बाल्टी मग्गे लोटे इन सब से। और हम लोग, मैं और एक हमारे राधानाथ महाराज के डिसाइपल, तो हम लोग एक पिट्सबर्ग में प्रोग्राम किए और वो प्रोग्राम किसी अमेरिकन के घर में था, कम से कम इंडियंस वहां पर वो लोग कुछ तो जुगाड़ कर कर रखते हैं, मग्गा रख लेते हैं, लोटा रख लेते हैं, कुछ बाल्टी रख लेते हैं। लेकिन ये अमेरिकन फैमिली जिसके प्रोग्राम के बाद हमको वहीं रुकना था, तो अभी प्रोग्राम तो हो गया, मेरे को लेक्चर की चिंता नहीं थी, चिंता ये नहीं थी कि क्या मैं लेक्चर सुनाऊंगा, वो सब हो गया। उसके बाद में अभी सुबह, इतना बड़ा तो उनका वो बाथरूम था, मतलब ऑलमोस्ट वो ना 200 स्क्वायर फीट का तो बाथरूम था उनका, और उसके अंदर ना तो कोई बाल्टी, ना कोई मग्गा, ना कोई लोटा, कुछ नहीं। तो रात के 12 बजे तक हम दोनों सोच रहे हैं कि कल सुबह क्या करेंगे। प्रॉब्लम हमारे, हम लोग सोलह माला की नहीं सोच रहे हैं कि सोलह माला कैसे करेंगे, सोलह माला के पहले उस अनर्थ को कैसे निकालेंगे। तो अभी रात के 12 बजे, बाकी वो लोग तो सब सो गए, हमको उन्होंने ऊपर वाला फ्लोर पूरा दे दिया था, और हम लोग देख रहे हैं अभी दूसरे कमरे में भी नहीं जा सकते कि उनको पता चलेगा कि पता नहीं क्या चोरी वोरी कर रहे हैं, दूसरे कमरे में क्यों जा रहे हैं। तो हम लोग ढूंढ रहे थे कहीं कोई ऐसे बाल्टी मिल जाए या कोई मंगा मिल जाए, तो कुछ नहीं, एक डस्टबिन मिला, लेकिन वो डस्टबिन जाली वाला था, वो थे ना जाली वाले डस्टबिन, तो जाली वाला डस्टबिन सोचा अभी इसमें तो पानी कोई अटेगा नहीं। फिर देखा कि वो जो टॉयलेट का कमोड था और वो जो वॉश बेसिन था उसमें आधा किलोमीटर का अंतर है, तो फिर फाइनली ये जो डिवोटी है बोले प्रभु जी मैं ऐसा करता हूँ, मेरे को एक आइडिया, मैं हम लोग जब आए थे ना शाम को तो मैंने इनका गार्डन देखा था, तो गार्डन में क्या है, गार्डन में मैंने पाइप देखा हो पानी डालने, तो वो मैं लेके आता। तो वो गए रात के 12 बजे उधर, वो पाइप लेके आए इतना बड़ा होस पाइप जैसा, उठा के बाथरूम के अंदर उन्होंने वॉश बेसिन में उसको लगाया, तो फाइनली मिशन अकम्प्लिश्ड। और सुबह वो जो होस्ट है वो लोग वो सोच रहे हैं कि ये रात में इन्होंने क्या सर्कस किया है, पूरा गार्डन का इतना बड़ा पाइप और ये सब कुछ। तो फाइनली देखो कोई भी स्थान, एक ब्रिटिशर वो नासिक में आया, अब वो लोग तो टिश्यू पेपर यूज करते हैं, हाँ उनको कोई आइडिया नहीं है कि ये इंडियंस, ये लोग ये शौचालय में पानी इतना क्यों इस्तेमाल करते हैं, अभी तक तो उनको बात समझ में नहीं आई है। तो ये भी इस क्वेश्चन को लेते हुए जिंदगी भर फाइनली इंडिया में आया ये अंग्रेज, और नासिक में उसने मिसल पाव खाया है अपनी तर्रे वाली जो है ना मिसल, एकदम लाल मिर्ची, हाँ खुले हाथ से डाली हुई, तो वो उसने खा ली, और खाने के बाद जो सुबह उसके हाल हुए, फिर तुरंत उसने अपनी वाइफ को फोन किया और कहा कि अब मुझे पता चला है कि ये लोग पानी क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टिश्यू पेपर तो आग पकड़ ले। सो देयरफॉर नो प्लेस, क्षमा करना मुझे कुछ भावनाओं में बह गया मैं। एंड फाइनली नो सिचुएशन, तो कोई वस्तु कोई व्यक्ति व्यक्ति कोई स्थान और कोई परिस्थिति. भीष्म पितामह कहते हैं ऑल ऑफ दीज फोर थिंग्स दे आर नॉट एब्सोल्यूटली इम्परफेक्ट ऑल ओवर इन दिस क्रिएशन और एब्सोल्यूटली परफेक्ट. इनके अंदर आपको गुण भी मिलेंगे दुर्गुण भी मिलेंगे. फाइनली इल्यूजन ऑफ गॉड इस बद्ध जीव का क्या होता है ये देखिए. इल्यूजन ऑफ गॉड इस बद्ध जीव का ये होता है कि वो भगवान के साथ एक संधि करना चाहता है. किस प्रकार की संधि करना चाहता है? भगवान को कहता है भगवान आपके पास आप सर्वशक्तिमान हो, मेरे पास शक्ति इतनी नहीं जितनी आपके पास है. तो शक्ति आपकी होगी, बुद्धि मेरी होगी. दिस इज द इल्यूजन ऑफ गॉड. माई इंटेलिजेंस बट योर पावर. आप आपकी बुद्धि मत लगाना, बुद्धि मेरी लगाने दो, सारे प्लान्स मैं बताऊंगा आपको, आप शक्ति. रावण की मेंटेलिटी है, रावण यही किया ना कि मुझे आपकी शक्ति चाहिए. कौन? सीता. अब देखो रावण और शूर्पणखा ये दोनों कैसे भाई बहन थे सच्चे कि शूर्पणखा को राम चाहिए थे सीता नहीं, रावण को सीता राम नहीं. तो जब इस प्रकार की कुत्सित बुद्धि होती है, जैसे एक बार एक व्यक्ति वो भगवान से वार्तालाप कर रहा है और इसी मनोधारणा में, कौन सी मनोधारणा में? योर पावर माई इंटेलिजेंस. तो भगवान से पूछता है भगवान आप एक बात बताओ कि आपका एक मिनट, आपके वैकुंठ लोक का एक मिनट हमारे पृथ्वी के कितने वर्ष होते हैं, उसका अप्रोक्सीमेट? तो भगवान ने कहा 10,000 साल होते हैं. मेरा एक मिनट तुम लोगों का 10,000 साल. ओ. फिर उसने पूछा आपका एक रुपया हमारे कितने रुपए होते हैं? तो भगवान ने कहा मेरा एक रुपया तुम्हारा 1 करोड़. ओ. फिर इसने फाइनल क्वेश्चन अपना, भगवान फिर 1 रुपया दोगे? क्या पूछता है? 1 रुपया दोगे? भगवान कहते हैं 1 मिनट रुक. एक मिनट रुक, मैं आता हूं. तो कोई अगर भगवान को बेवकूफ बनाने जाता है तो भगवान ने गीता में कह दिया है कि जितने ठग हैं उन सब का सरदार भी मैं हूं. कोई अगर भगवान को ठगने जाएगा तो. इसलिए हमारे आचार्य हमको क्या सिखाए हैं कि भगवान की तरफ हमको किस धारणा में जाना चाहिए. मानस देहो गेहो जो किछु मोर आरपिलु तुआ पदे नंद किशोर, कि जो कुछ मेरा है भगवान मैं सब कुछ सर्वस्व आपको समर्पित करता हूं. मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार. अब आपकी जो इच्छा हो, आपकी शक्ति, आपकी बुद्धि, आपकी इच्छा, ये है जब हम इस अंततः इस मोह से बाहर आ सकते हैं. दिस इज कॉल्ड कमिंग आउट ऑफ द अल्टीमेट इल्यूजन ऑफ गॉड, विच मीन्स सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. जो अर्जुन ने गीता सुनने के पश्चात अंत में अपने एक्शन से दिखाया कि अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित करते हुए क्या कहा, अब करिष्ये वचनम तव, जो आप चाहोगे हे केशव वही मैं करूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण.